Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad Bhumika, presented by Swami Sri Jagdish Puriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Roop teen hai, magar arth aur swaroop teen nahi hai. Arth ek hai, jo ki uska swaroop hai. ईश्वर गुरु और आत्मा एक ही तत्व है, तो ईश्वर कृपा जब होती है तो गुरु कृपा अपने आप होगी। भागवत के कई प्रसंग मैंने विचार किए, वहां स्पष्ट होता है कि जब ईश्वर कृपा होती है तो गुरु कृपा हो ही जाएगी, परंतु ईश्वर भी उसके ऊपर कृपा करते हैं जो व्यक्ति अपने आप पर कृपा करता है। भागवत में ऐसे कई प्रसंग हमने देखे। नारद जी महाराज इस भूमंडल पर विचरण करते 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 जब यमुना के तट पर पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि एक युवती स्त्री जिसके पास में दो बुजुर्ग व्यक्ति सोए हुए हैं, कुछ और स्त्रियां बैठी हुई हैं, सोए हूं कोई पंखे जल रही है, युवती जगाने की चेष्टा कर रही है, प्रबोधन दे रही है, लेकिन सोए व्यक्ति जागते नहीं है। नारद जी आ जाते हैं। नारद जी को देखकर कि वो युवती खड़ी हो जाती है, भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे महाराज, हे संत जी, हे साधु महाराज, एक क्षण के लिए जरा रुकिए, आपके दर्शन करने से मुझे बड़ी शांति मिली, आपके मुख से दो शब्द मिलेंगे तो मैं धन्य हो जाऊंगी, आप रुकिए। उनको देखकर नारद जी रुके और नारद जी पूछने लगे, देवी तुम हो कौन? ये पास में सोए हुए बुजुर्ग कौन? ये जो हवा कर रही हैं स्त्रियां कौन? अपना परिचय दो, कथा आपको मालूम है। उसने अपना परिचय दिया, मैं भक्ति हूं, ये मेरे दोनों सोए हुए ज्ञान और वैराग्य पुत्र हैं, काल के प्रभाव से जर्जर हो गए हैं, वृंदावन की भूमि के प्रभाव से मैं पुनः युवती हो गई हूं, आदि आदि उसने अपना परिचय दिया। महाराज आप संत हैं, मेरे पुत्रों को जगा दीजिए, अचेतन अवस्था में पड़े हैं। नारद जी ने पूरी चेष्टा की जगाने के लिए, कान में नजदीक मुंह ले जाकर के जोर से आवाज देते हैं, ज्ञान प्रबुद्धिताम, रे वैराग्य प्रबुद्धिताम, ज्ञान जागो, हे वैराग्य जागो, दोनों ही नहीं जगे, अचेतन पड़े हैं। नारद जी भी चिंतित हो गए, कैसे जगाया जाए, बड़ी चिंता करने लगे। आकाशवाणी ने बताया, कोई साधु पुरुष मिलेंगे, वो इनको जगाने का उपाय नारद जी तुम्हें बताएंगे, साधु है साधु भूषण, कोई श्रेष्ठ संत मिलेंगे वो बताएंगे। इससे पूर्व नारद जी तीर्थ तीर्थ में भटक चुके, बाबाओं के एक एक कुटिया कुटिया छान चुके हैं, लेकिन शास्त्र वर्णित जैसे सन्यासी संत होने चाहिए एक भी नहीं दिखाई पड़ा। कौन है साधु श्रेष्ठ, कौन ज्ञान वैराग्य को जगाने का उपाय बताएं, और भटके कोई नहीं मिला। आखिर नारद जी हिमालय में गए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए, सोचा कि ध्यान करूंगा, ईश्वर कृपा प्राप्त करूंगा और दोनों को जगाने का उपाय प्राप्त करूंगा। और जो ही ध्यान करने के लिए ईश्वर चिंतन के लिए बैठते हैं, सामने से शनकादि ऋषि आ जाते हैं। जब महापुरुषों को खोजा, जब गुरु को ढूंढा, ज्ञान वैराग्य को जगाने वाले को, वैसा गुरु कहीं भी नहीं मिला। और जब बैठ गया निश्चय करके, नारद जी ने अपने पर अपनी कृपा की, इतने में ईश्वर ने कृपा की कि शनकादि ऋषियों को गुरु के रूप में भेज दिया। जब व्यक्ति अपने पर कृपा करता है तो ईश्वर ऐसा संयोग देखता और गुरु को भेज देते हैं, और वही शनकादि ऋषियों ने ज्ञान और वैराग्य को जगाने का उपाय बताया। गंगा किनारे भागवत शुरू होती है और दौड़े जाते हैं उठ करके। ध्रुव जी महाराज का जीवन आप देखिए, मां के शब्दों की चोट खा करके तप करने के लिए ध्रुव जी महाराज जंगल की ओर चल पड़ते हैं, भजन करने के लिए, तपस्या करने के लिए। परंतु भजन कैसे होता है, प्राणायाम आदि कैसे होते हैं, तप की विधि क्या है, मंत्र क्या है, मंत्र का अर्थ क्या है, ध्रुव जी को कुछ भी मालूम नहीं था। एक निश्चय किया है, सिर्फ कि मैं तप करूंगा। और इस निश्चय को लेकर के जब वन में प्रस्थान करते हैं, सामने से नारद जी महाराज मिल जाते हैं। जब स्वयं ने अपने पर कृपा कर दिया है, मैं भजन करूंगा, ये अपनी आप की अपने आप के ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि साधक ये निश्चय कर ले कि मुझे भजन करना है, मुझे परमात्मा को पाना है। इस निश्चय कर लेना ये साधक की अपने आप के ऊपर बड़ी कृपा है। ये विचार आना कि संसार से मुक्त कैसे हो, निश्रेष की प्राप्ति कैसे हो, उस साधन को मैं स्वीकार करूं, ये निश्चय करना साधक के लिए बहुत बड़ी अपने आप पर कृपा है। और जब स्वयं अपने पर कृपा करता है तो भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं, दया करते हैं और गुरु प्रेषित करते हैं, क्योंकि भगवान ही गुरु के रूप में होकर के आते हैं। इसलिए कि भगवान सीधे सीधे भगवान रह करके उपदेश नहीं दे सकते हैं। ये शास्त्र में कहीं भी नहीं आया कि भगवान किसी शिष्य को ज्ञान दे रहे हो। कहीं पर भी ऐसा नहीं आता है कि सीधे भगवान ने किसी शिष्य को ज्ञान दिया हो और उसे मुक्ति प्रदान की हो। हां, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण भगवान बनकर के ज्ञान नहीं देते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी गुरु की गद्दी पर बैठ करके ज्ञान देते हैं। अर्जुन शिष्य बनता, भगवान गुरु बनते हैं। शिष्य स्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हैं। तो ज्ञान देना गुरु का काम है। इसलिए गुरु कृपा कब होती है? जब साधक अपने पर आपके ऊपर कृपा कर ले। अपने पर जब कृपा करता है तो भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं और वो भगवान गुरु बनकर के आते हैं। इसलिए गुरु कृपा उस साधक के ऊपर बरसती है। कई प्रसंग ऐसे हैं, बहुत विस्तार में जाने की जरूरत नहीं, आप समझ गए। गुरु कृपा बहुत आवश्यक है और गुरु कृपा भगवत कृपा से प्राप्त होती है, क्योंकि साधक में यदि ऐसी क्षमता हो कि वो गुरु की परीक्षा करके देखें कि मेरे गुरु होने लायक है कि नहीं, ये मुझे मुक्ति दिला सकते हैं कि नहीं, मेरे अज्ञान अंधकार को मिटा सकते हैं कि नहीं, ऐसी योग्यता इनके पास है अथवा नहीं, पहले मैं समझ लूं। यदि ऐसी क्षमता इनके पास में है तब फिर मैं इनको गुरु के रूप में स्वीकार करूंगा। ऐसी क्षमता यदि साधक स्वयं ही रखता हो तो सज्जनों, मैं नहीं समझता हूं कि उसे साधकों को किसी गुरु की खोज की आवश्यकता हो। वो गुरु की परीक्षा करने में जब सक्षम है तो गुरु का भी परीक्षक है, गुरु का भी गुरु है, उसको अन्य गुरु की क्या आवश्यकता पड़ गई। साधक को तो केवल अपना निश्चय करना चाहिए, मुझे कल्याण पथ पर चलना है और मार्ग दिखाने के लिए भगवान कृपा करेंगे, वो जरूर गुरु को प्रदान कर देंगे। इसलिए किसी भी साधन पर जब हम लगते हैं, चाहे कर्म में, भक्ति में या ज्ञान में, वहां पर गुरु की कृपा होना बहुत आवश्यक है। और वो गुरु कृपा ईश्वर कृपा से ही प्राप्त होती है। इसलिए किसी ग्रंथ को प्रारंभ करने से पहले भगवत स्मरण किया जा रहा है। इस उपनिषद में भी सबसे पहले ईश्वर स्मरण है और प्रार्थना है, ये मंगलाचरण है, मंगल की कामना है, कृपा की कामना है। और बहुत अच्छी प्रार्थना इसके अंदर की जा रही है, जिस प्रार्थना को प्रतिदिन इस मंच से बोला जाता है। प्रारंभ में बोला जाता है, ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इस मंत्र में ओंकार स्वरूप जो परमात्मा है, जो परमेश्वर है, उन भगवान से प्रार्थना की गई है। ये ओम भगवान का सर्वश्रेष्ठ नाम है। जैसे एक व्यक्ति के कई नाम होते हैं, घर में कुछ नाम से बोला जाता है, ऑफिस में अलग नाम से बोला जाता है, मित्र मंडली में किसी और ही नाम से जाना जाता है, इसी प्रकार से भगवान के भी अनेक नाम है। विष्णु शास्त्र नाम में आया, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। भगवान अनेक रूप रूपाई है, अनेक रूप में उत्पन्न होने वाले विष्णु, प्रभ विष्णु प्रकट होने वाले हैं। तो जिस जिस रूप को धारण करते हैं उस रूप के नाम वाले कहे जाते हैं। इसलिए 1000 नाम तो विष्णु सहस्त्र नाम में ही आ गए। माने भगवान के अनेक नाम है, मगर उन नाम में से भगवान का परम प्रिय नाम कौन सा है, जिस नाम को सुनकर के भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाए, जो भगवान का श्रेष्ठ नाम है, जो प्रमाणित नाम है, जो सब जगह चलने वाला नाम है, और जिस नाम के बिना बाकी नाम अधूरे हो, बाकी नाम अपंग हो, बाकी नाम चल ही न सके, वो सबसे पहला नाम, श्रेष्ठ नाम वो कौन है, तो वो नाम है ओम। ओम भगवान का सर्वश्रेष्ठ नाम है। इसी उपनिषद में आप आगे चल करके देखोगे, बड़ी सुंदर व्याख्या वहां पर करते हैं। ये जो ओम शब्द है, सर्वे वेदा यत पदम आमनंति तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति यदि छन्तो ब्रह्मचर्यम चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। सर्वे वेदा यत पदम आमनंति, सारे के सारे वेद शास्त्र जिस पद को आमनन करते हैं, कथन करते हैं, बोलते हैं। कोई भी काम जब प्रारंभ किया जाता है, वेद का कोई भी मंत्र बोला जाता है, तो सबसे पहले जिस पद को स्मरण करके और उसको उच्चारण करके किया जाता है, यह है ओम। ओम इति उदाहरित्य यज्ञ दान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विद्वानोक्ता सततम ब्रह्मवादिनाम। गीता में लिखते हैं कि जो ब्रह्मवादी है, जो वेदवादी है, वेद पाठ करने वाले हैं, मंत्रोच्चारण करने वाले हैं, ऐसे वेदवादी साधक लोग जब वेद मंत्रों का उच्चारण प्रारंभ करते हैं तो कैसे करेंगे, ओम इति उदाहरित्य, ओम ये शब्द का उच्चारण करके, चाहे यज्ञ कर्म कर रहे हो, चाहे दान कर्म कर रहे हो, और भले ही तप कर्म कर रहे हो, उसका प्रारंभ ओम शब्द के द्वारा ही होता है। ओम के रूप में परमेश्वर को स्मरण किया जाता है, इसलिए कहा कि ये ओम श्रेष्ठ है, भगवान का श्रेष्ठ नाम। ओम एतद आलंबनम श्रेष्ठम, एतद आलंबनम परम, ये एक श्रेष्ठ आलंबन है। इस नाम से ही उस नामी का स्मरण होगा। किसी व्यक्ति का नाम है और आप उस व्यक्ति को जानते हैं, नाम को जानते हैं, जो ही विश्व व्यक्ति का नाम लिया जाता है, उसकी आकृति आपके सामने आ जाती है, आपके मन में बस जाती है। आपका बच्चा भले ही कहीं विदेश में अध्ययन कर रहा हो, परंतु जब यहां पर कोई मिलने के लिए घर पर आए और कहा क्या बात है, आज महेश नहीं दिखाई पड़ रहा है, आप कहेंगे महेश विदेश गया हुआ है पढ़ने के लिए। परंतु जो ही महेश शब्द बोला जाएगा, आपने उसको अपने पुत्र के रूप में अनुभव किया, जाना है, देखा है, और महेश शब्द बोलते ही उस बच्चे की पूरी आकृति आपके मन में छा जाती है, पूरी आकृति आ जाएगी। महेश शब्द में ही वो शक्ति है, वो अभिधान में शक्ति है, उस अभिधेय का, उस व्यक्ति का रूप प्रकट करा देता है, मन में बसा देता है। ऐसे ही भगवान का जो नाम है ओम, इसे ओम शब्द में ही वो शक्ति है। ओम बोलते ही अनंत शक्ति परमेश्वर हमारे मन में आ जाते हैं। नाम बोलते ही भगवान मन में प्रकट होते हैं, इसलिए भी प्रकट होते हैं कि ओंकार स्वरूप भगवान जहां पर हम स्मरण कर रहे हैं पास में ही बैठे हुए हैं, अंतर्यामी होकर के बैठे हुए हैं, वो दृष्टा बनकर के बैठे हुए हैं। उपनिषद का मंत्र आप सुनोगे, एक ही पेड़ के ऊपर दो पक्षी बैठे हुए हैं, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। एक वृक्ष है जिसके ऊपर दो पक्षी बैठे हुए हैं और दोनों पक्षी बहुत अच्छे हैं, सुपर्ण वाले हैं, अच्छे पंख वाले हैं, बहुत सुंदर है, लेकिन स्वभाव में अंतर है। एक पक्षी जिस पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है, उस पेड़ पर लगने वाले जो फल है उसको सेवन करता है और जैसा स्वाद आता है वैसे उसके मुंह की भंगिमा होती है, आकृति बन जाती है, कभी आनंदित होता है, कभी दुखी हो जाता है, मुंह बिगाड़ देता है। मगर एक ऐसा पक्षी पास में ही बैठा हुआ है जो पक्षी खाता पीता नहीं, लेकिन अभी चाकशीती चमक रहा है, दीप्यमान है और खाने पीने वाले को देख भी रहा है। वो जो पक्षी है अंतर्यामी दृष्टा परमेश्वर, क्योंकि वो खाने वाले पक्षी के बिल्कुल पास में बैठा हुआ है, इस जीव के बिल्कुल नजदीक बैठा हुआ है, इसलिए जीव जब उसके प्रिय नाम से उसको पुकारता है तो तत्काल उसकी दृष्टि उसके ऊपर चली जाती है, उसको देखने लग जाता है, और जब भाव से पुकारता तो उस पर अनुग्रह करने लग जाता है, बड़ी कृपा कर देता है। इसलिए साधक ये जीवात्मा पक्षी उस परमेश्वर पक्षी को ओम शब्द के द्वारा पुकार रहा है कि हे ओंकार स्वरूप परमेश्वर, सहना भवतु सहनो भुनक्तु, आप ऐसी कृपा करें, सह नव अवतु। वह परमेश्वर प्रार्थना कर रहा जो ओंकार स्वरूप है, जिसको ओम नाम बहुत ही प्रिय है, जिस ओम नाम में उसका पूर्ण स्वरूप छुपा हुआ है, सभी अभिव्यक्तियां जिसके अंतर्गत आ जाती है, रूप और स्वरूप दोनों को जिससे जाना जा सकता है, ऐसा जो ओंकार स्वरूप परमेश्वर है वह सहनौ अवतु, हम दोनों की साथ साथ रक्षा करे, अवरक्षण है वो परमेश्वर, साथ साथ हम दोनों की रक्षा करे। हम दोनों कौन? क्या भाई भाई, क्या पति पत्नी, क्या पिता पुत्र, कौन? गुरु और शिष्य। साधक प्रार्थना कर रहा है भगवान से, गुरु और शिष्य दोनों की रक्षा करे। किससे रक्षा करे? खतरा क्या है, क्या खतरा मंडरा रहा है जिससे रक्षा करे? व्यक्ति के सामने जब कोई खतरा आता है तब हनुमान जी को याद करता है, हे संकट मोचन बचाओ। साधक जब कोई खतरा आता है तो प्रार्थना करता है, भगवान रक्षा करो, हमारी रक्षा करो, और अकेले की नहीं दोनों की रक्षा करो, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के पूरक है। आपका चिंतन अकेले नहीं किया जा सकता, परस्पर होगा। ये वेद का संवाद है, ये उपनिषद का संवाद है, और संवाद हमेशा दो के बीच में होता है। भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद हो रहा है, दो के बीच में चलता है, तो दोनों की आप रक्षा करें। किस चीज से रक्षा करें? जब हम वेदांत चिंतन करने के लिए बैठते हैं तो आप ऐसे रक्षा करो कि कोई शत्रु हमारे ऊपर कोई आक्रमण न कर दे। कौन है शत्रु? गीता को उठा करके देखिए, काम ऐश क्रोध ऐश रजोगुण समुद्भव महाश्नो महापापमा विद्य नमीह वैरिणम। ये वैरी है, भगवान कहते हैं तुम्हारे शत्रु है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये शत्रु है। हम पढ़ने के लिए बैठ गए, श्रवण करने के लिए बैठ गए, लेकिन ऐसे मन में वृत्ति आकर के बैठ जाती है, इस मन का अपहरण करके ले जाती है, और मन कहां से कहां भटक जाता है। बोलने वाले की मनोवृत्ति का, सात्विकता का अपहरण हो गया, जो छुपा हुआ भीतर में ज्ञान है वो रह जाता है, कुछ से कुछ निकल पड़ता है। एकाग्रता प्राप्त हो, ये कोई शत्रु आक्रमण न करे, हमारी उससे आप रक्षा करिए, हम सात्विक बन करके और इस वेदांत को अध्ययन कर सके, इसलिए हम दोनों की रक्षा करें। सहनो भुनक्तु, हम दोनों की एक साथ आप पोषण करें, भरण पोषण करें। रक्षा के साथ साथ पोषण करना अर्थ है केवल बचाना ही बचाना नहीं, पोषण भी होना चाहिए। रक्षा एक बालक है, सरदे स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया। एक कोई बालक है, उस बालक की ओर कोई कुत्ता आता है तो मां डंडा मार के कुत्ते को भगाएगी। हाथ में कोई मिठाई है, कोई ग्रास है, कोई वस्तु है, उसको देख करके कौवा झपटता है, मां उसको कौवे को भगाएगी। कुत्ता कौवा आदि से उस बच्चे की रक्षा कर रही है, उसको नुकसान न करे, ये रक्षण है। लेकिन रक्षा मात्र से बच्चा बच नहीं जाएगा, उसका पोषण भी करना पड़ेगा, उसको दुग्धपान भी कराना पड़ेगा, उसको भोजन भी देना पड़ेगा, आवश्यक है। रक्षा के साथ साथ उसका पोषण भी होना चाहिए। ऐसे ही यहां पर प्रार्थना की जा रही है, इन विकारों से हे भगवान हमारा रक्षण करिए, इसके साथ साथ हमारा पोषण भी होना चाहिए, हमारे भीतर में वैराग्य आना चाहिए, विवेक आना चाहिए, समदमादि साधन आने चाहिए, हमारे अंदर मुमुक्षा आने चाहिए, ये साधन ये गुण हमारे भीतर में हो, दोषों का अपनयन हो, बुराइयां दूर जाएं, जो हमारे जीवन की बुराइयां हैं उससे हमारे प्रभु रक्षा करो, वो बुराइयां हमें भटका देगी, साधना में बाधक बन जाएगी, बुराइयों को आप हटाएं और हमारे जीवन में गुणाधान करें, शब्दमादि साधन हमारे जीवन में आवे, श्रवण आदि अंतरंग साधन आवे, उन साधनों के द्वारा हमारा पोषण करें, हम साधना में आगे बढ़ सके। इस प्रकार से साधक प्रार्थना कर रहा है, हमारी बुराइयां दूर हो, बुराइयों से आप रक्षा करें और हमारे जीवन में गुणाधान हो, सद्गुण हमारे जीवन में आवे। साधक के लिए बताए गए आवश्यक जो साधन है, अमानित्व आदि साधन है, कल ही 15वां अध्याय का पाठ कर रहे थे, भगवद गीता के 15वां अध्याय में आया, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामहा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त्य मूढ़ा पदम व्ययम तत्। उस अविनाशी पद को कौन प्राप्त करेगा? वो साधक उस अविनाशी पद को प्राप्त कर सकता है, उस मुक्त अवस्था को वो साधक प्राप्त कर सकता है जो निर्माण मोहा है, जिनमें महान मोह निकल चुके हैं, ऐसा साधक ही उस तत्व को प्राप्त कर सकता है। तो ये मान की जो कामना है, हमारे भीतर में बैठा हुआ जो मोह है वो समाप्त हो जाए, वो निकल जाए, वो चला जाए, उसकी जगह हमारे जीवन में सद्गुण आवे और उन सद्गुणों के द्वारा उस ज्ञान को धारण कर सके, उससे आप सद्गुणों के द्वारा ज्ञान के साधनों के द्वारा हमारा पोषण करें। सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवा वह। हे भगवान आप ऐसी कृपा करो कि हम दोनों साथ साथ शक्ति को प्राप्त करें, ऐसा सामर्थ्य प्राप्त करें, वक्तृत्व और श्रोतृत्व की जो शक्ति है, वक्तृत्व शक्ति और ग्रहण करने की शक्ति, वो ज्ञान हमारे जीवन में धारण हो जाए, वैसी शक्ति वैसा सामर्थ्य आप प्रदान करें। कभी कभी ऐसा होता है कि सुनते हैं लेकिन आर पार निकल जाता है, इधर से उधर है, मगर भीतर नहीं उतर पाता है, यहां का यहां छूट जाता है, ऐसा नहीं, ये जो विद्या है उस विद्या को हम धारण कर सकें, ऐसी शक्ति ऐसा सामर्थ्य भगवान हमें प्रदान करे। सहवीर्यम करवा वही तेजस्विना वधितम अस्तु नो अधितम तेजस्वी अस्तु। हमने जो पढ़ा है, हमने जो चिंतन किया है, परस्पर संवाद के रूप में जो विचार किया है, वो हमारा पढ़ा हुआ कहीं अंधकार में न चला जाए, कहीं उसकी विस्मृति न हो जाए, कहीं उस पर अज्ञान आवरण न चढ़ जाए, कहीं विक्षेप के झोंके न लग जाए, हमारा जो पढ़ा हुआ है वो प्रकाशित हो, हमारे जीवन में फलीभूत हो, जैसा परस्पर विचार किया, वेदांत से निश्चय किया है, वो आत्मज्ञान हमारे जीवन में प्रकाशित हो और हम जीते जीत जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव कर सके, शरीर के रहते रहते भी हम शरीर से मुक्ति का अनुभव कर सके, ऐसा वो ज्ञान हमारे जीवन में प्रकाशित हो जाए, उसके लिए भगवान से प्रार्थना की गई है। और उस ज्ञान को प्राप्त करने में भगवान जो भी विघ्न बाधाएं आती हैं उसको आप शांत कर दीजिए, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे कारण रूपा हो, तीनों ही प्रकार के आने वाले विघ्नों को आप शांत कर दीजिए। जब इस विद्या को ग्रहण करने के लिए बैठते हैं, कहीं शारीरिक व्याधियां विघ्न पैदा करेगी, श्रेयांसी बहु विघ्नानी, कल्याण के पथ पर चलोगे तो विघ्न आएंगे, भगवान ही उन विघ्नों से बचाएंगे। इसलिए प्रार्थना किया गया हमारा शरीर भी सक्षम रहे, कहीं ऐसा नहीं कि सुनने के लिए बैठे और बार बार ध्यान जा रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, कब 8:30 बजे, कब महाराज छोड़ें, ध्यान तो उधर जा रहा है, ऐसी स्थिति न बने। इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं ये विघ्न बाधा शांत हो जाएं। हम बैठ गए हैं यहां पर, बार बार घड़ी पर नजर जा रही है, मन सुधरे में नहीं, घड़ी के ऊपर है, सच्चाई घड़ी पर भी नहीं है, जिस अवश्य अवश्य काम से आपको जाना है बार बार उसकी याद सताने लग जाती है। हाँ, समय पर अपने आप छोड़ दिया जाएगा, लेकिन मन को धैर्य नहीं है, मन बार बार जा रहा है, ये विक्षेप पैदा हो रहा है। ऐसी कृपा करो कि मन एक जगह लगा रहे, एक ही जगह स्थिर हो जाए। उसके लिए कहा कि महाराज शांत, और जो हम सुन रहे हैं उस पर अविद्या आवरण फिर न चढ़ जाए। आज जो सुना है कहीं ऐसा न हो कि कल ही हमको नया मालूम पड़े, महाराज कल की बात भूल गए, जरा और दोहराइए। नहीं, वो अज्ञान आवरण ना आवे, वो हमारा अज्ञान आवरण शांत हो जाए। उसके लिए तीसरी बार प्रार्थना किया शांति ही, तीन बार शांति शांति करके इस मंत्र से प्रार्थना की गई प्रभु से कि ये जो कठोपनिषद हम लोग श्रवण करने के लिए जा रहे हैं, सब प्रकार से इसको ग्रहण करने में धारण करने में सक्षम हो। इसी प्रार्थना के साथ अब इस कठोपनिषद का जो विषय वस्तु है उसमें कल प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। घड़ी इनकार करती है इन्हीं शब्दों के साथ, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।